सोमवार 18 जुलाई दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। संसद में मानसून सत्र के पहले दिन गूंजा कश्मीर मुद्दा। गुलाम नबी आजाद ने पूछे सवाल तो सरकार के मंत्रियों ने दिए जवाब।
पुलिस चौकियों पर थानों को जलाने लग पड़े और आतंक मचाने लग पड़े तो स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाओं में कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी।
बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें। यूपी में प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाने की तैयारी में कांग्रेस। सुनिएगा कैसा है राहुल गांधी की बहन का व्यक्तित्व।
मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ।
I did idolize my grandmother. I grew up in a household where she was the head and she was extremely powerful woman.
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन कश्मीर में भड़की हिंसा का मुद्दा छाया रहा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा में जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वहां एक निर्वाचित सरकार है। उनका कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को फोन कर कहा कि राज्य में प्रतिरोधी कार्रवाई करें। गुरुवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद फ्रांस ने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की घोषणा की है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों ने बताया कि सुरक्षा सेना भारी भीड़ वाली जगहों और सरहदों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। पर्यटक स्थलों, समुद्र तटों, सांस्कृतिक और खेल आयोजन की जगहों की सुरक्षा सेना करेगी। हमले में मारे गए 84 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस में एक मिनट का मौन भी रखा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने स्मृति सभा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। नीस में भी समुद्र के किनारे लोगों ने एक मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट की बैठक के बाद फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री बेर्नार कैजनोव ने कहा, जाहिर है इसका मतलब है कि हम यूरोप और फ्रांस को निशाना बनाने वाले आतंकवाद के खिलाफ तैनाती कर रहे हैं। इससे हम खतरे को साफ देख पाएंगे। अगर खतरे को लेकर यह स्पष्टता नहीं होगी तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के हमारे पक्के इरादे कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम तभी फ्रांस में पहले जैसे हालात कर पाएंगे जब फ्रांस के लोगों से सच बोलेंगे और हम में मुसीबत से लड़ने की एकता होगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक करीब 8,000 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनसे हथियार भी ले लिए गए हैं। इन पुलिसकर्मियों को पिछले हफ्ते सेना की टुकड़ी के तख्तापलट की नाकाम कोशिश में शामिल होने के शक के तहत निलंबित किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन पुलिसकर्मियों पर इस साजिश से जुड़े होने के आरोप हैं। सरकार का आरोप है कि ये साजिश अमरीका में रहने वाले धार्मिक नेता फतेउल्ला गुलेन ने गुप्त रूप से आयोजित की थी। इस मामले में अब तक करीब 6,000 सेना अधिकारी और सदस्य हिरासत में लिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में प्रशासनिक सुधार के लिए जस्टिस आरएम लोढ़ा की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मानी गई सिफारिशों के अनुसार अब बीसीसीआई में किसी अहम पद पर ना तो कोई मंत्री रह सकता है और ना ही कोई प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होगी। बीसीसीआई का कोई सदस्य एक वक्त में एक ही पद पर रह सकता है ताकि किसी तरह के हितों का टकराव न हो पाए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत राज्यसभा में भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले दिनों हिंसा पर हुई बहस के साथ हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की और बहस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि उन्हें कश्मीरी लोगों में विश्वास पैदा करने में 200 साल लगेंगे। विपक्ष के उठाए सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष से वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृहमंत्री राजनाथ सिंह सामने आए। राजनाथ सिंह ने भारत प्रशासित कश्मीर में जारी मौजूदा शांति के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। दिव्या आर्य से सुनिए पूरा ब्यौरा।
क्या वजह है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स हिंदुस्तान के किसी दूसरे जगह में नहीं लगती है?
बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पीडीपी बीजेपी सरकार ने खुद माना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जो निंदनीय है। भारत प्रशासित कश्मीर के लोगों और भारत के बाकी नागरिकों के साथ अलग सलूक की बात को आगे बढ़ाते हुए आजाद ने सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा और विवादित धार्मिक नेता जाकिर नाइक का हवाला देते हुए मुसलमानों के प्रति अलग रवैये की बात भी रखी।
जाकिर नाइक की इंक्वायरी करिए, वो अगर आतंक फैलाता है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन अगर आपकी पार्टी का या आपकी विचारधारा से मिलता हुआ वो ये कहता है कि जाकिर नाइक की गर्दन लाओ और 50 लाख ले जाओ, वो तो जेल में नहीं जाना चाहिए और इस तरह के स्टेटमेंट वाले जेल में नहीं जाने चाहिए। जब जेल में नहीं जानते हैं तो फिर कश्मीर जैसे हालात हो जाते हैं।
जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस ओर ध्यान दिलाया कि राज्य में सैलानियों की तादाद बढ़ी है और लंबे समय से शांति बहाल रही है। उन्होंने कहा कि वो पिछली सरकारों के राज्य में काम पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर बिगड़ते हालात की एक बड़ी वजह पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को नागरिक आंदोलन की शक्ल देना है।
जब हजारों की संख्या में लोग आकर उनके ऊपर पुलिस चौकियों पर थानों को जलाने लग पड़े और आतंक मचाने लग पड़े तो स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाओं में कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। कोई भी देश ये अनुमति नहीं दे सकता कि देश की एकता के ऊपर प्रहार करिए और देश देखता रह जाए।
वहीं वाम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर उंगलियां उठाने से ही हल नहीं निकलेगा और राज्य के लोगों से बातचीत करना जरूरी है।
आप जो है ये सिर्फ ये कह दें कि पाकिस्तान ने करवा रहा है ये सब और इसके वजह से ये सब हो रहा है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये कूटनीति क्या है? ब्लू हॉट ब्लू कोल्ड, कभी 56 इंच की छाती है हमारे पास, कभी हम उतर जाते हैं हवाई जहाज से बिरयानी खाने के लिए उनकी जन्मदिन के अवसर पर। अब क्या हो रहा, मतलब क्या है ये ब्लू हॉट ब्लू कोल्ड? अब पाकिस्तान का ही समस्या है तो तय करिए आप।
शरद यादव ने भी बातचीत पर जोर देते हुए सवाल उठाया कि अलगाववादियों से बातचीत बंद क्यों की गई, पर सभी सवालों के जवाब में आखिर में बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान ही राज्य में हो रही सारी परेशानियों की जड़ है।
कहने को तो नाम पाकिस्तान है लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक है। मैं कहता हूं हर हरकतें नापाक। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, विभिन्न आतंकवादी संगठन, चाहे वो लश्करे तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, का यह एक यूनाइटेड ग्रुप है। इसे UJC कहते हैं, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो कि पाकिस्तान की हिदायत पर, पाकिस्तान के इंस्ट्रक्शंस पर वो बराबर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है।
गृहमंत्री ने जोर दिया कि आतंकवादियों के साथ सख्ती और आम लोगों के साथ नरमी की उनकी नीति जारी रहेगी। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 1900 नागरिक और 1664 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। घाटी के 10 जिलों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। श्रीनगर में आज दूसरा दिन था जब अखबार नहीं आए। सरकार ने स्थानीय अखबारों के प्रकाशन पर भी पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है उन्हें बांटने पर। BBC संवाददाता जुबैर अहमद आज ही श्रीनगर पहुंचे हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं। जुबैर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि इस वक्त आप कहाँ हैं और अब तक आपने क्या देखा और महसूस किया है वहाँ श्रीनगर में?
देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मैं जम्मू से श्रीनगर आया हूँ हवाई जहाज से, और एयरपोर्ट से सीधा यहाँ लाल चौक में मैं आया, जहाँ पर मैं अभी मेरा कैंप है। रस्ते में सारी दुकानें मुझे बंद मिली, बिल्कुल सन्नाटा था सड़कों पर और जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे थे, वाहन भी नहीं चल रहे थे। ऐसा लग रहा था, अभी मैं 3 महीने पहले यहाँ श्रीनगर आया था, उसके मुकाबले में आज जो अब तक मुझे नजर आया है, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल यहाँ पे कर्फ्यू से, हालांकि कर्फ्यू इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ वहाँ नहीं लगा है, लेकिन घाटी के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू है और मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दिल्ली फोन करने की, तो कोई मोबाइल यहाँ नहीं चल रहा, सिर्फ BSNL का मोबाइल चल रहा। अखबार जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन से नहीं छप रहे हैं। लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है कई जगह पे अभी भी जारी है, अगर कहीं आप जाएं तो पत्थरबाजी भी हो सकती है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के से अब तक जो मौतें हुई हैं उसके बारे में यहाँ पर अब तक लोगों में गुस्सा है, और हमें ये कहा जा रहा है, जैसे कि निर्मल सिंह साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी यही कहना, जो हमारे होम मिनिस्टर ने जो कहा वही लाइन यहाँ भी है कि पाकिस्तान इस के पीछे है और ये एक तरह से प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान कर रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे हिंसा भड़की है। और अब ये कि एक दो दिन जो हिंसा हुई उसके बाद प्रशासन ने बिल्कुल काबू में रखा हुआ है सिचुएशन को, उनका यही दावा है।
जुबैर साहब, लोगों को आम चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी दिक्कत हो रही है, क्या इस तरह की कुछ खबरें मिल पाई है कि उनकी ज़रूरतें कैसी पूरी हो रही हैं?
दिक्कत में है लोग काफी, जब मैं जम्मू में था उस वक्त भी संपर्क में रहा यहाँ के लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो, और जो निकल सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो नुक्कड़ पे सब्जी के जो दुकानें हैं वहाँ से सब्जियां खरीद सकते हैं, या जो दुकान इक्का दुक्का जो दुकानें खुली है वहाँ से अपनी जरूरत के सामान ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, सिनेमाघर बंद हैं, तो जाहिर है उनको दिक्कत हो रही है। इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं और मोबाइल की जो सुविधाएं, जो दिल्ली में बैठ के हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है और हमें कभी दिक्कत नहीं हुई, यहाँ आकर आप देखें तो समझ में आएगा कि ये बहुत ही प्रिविलेज चीज़ है, बहुत नायाब चीज है यहाँ के लोगों के लिए, फिलहाल कम से कम ऐसा ही नजर आ रहा है। तो दिक्कत है, लोग आम सामान नहीं हो पाई है जिंदगी यहाँ पर, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
श्रीनगर में जुबैर अहमद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कश्मीर में बंद, प्रदर्शन, हिंसा और कर्फ्यू तो अक्सर होते हैं, लेकिन आमतौर पर अखबार बंद नहीं होते। लेकिन आपने जैसा कि सुना जुबैर अहमद से कि अखबारों को भी इस वक्त बंद कर दिया गया है, उन्हें बांटने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि 2008 और 2010 में भी अखबारों पर रोक लगी थी। ये रोक आधिकारिक तो नहीं होती, अखबार छपते हैं लेकिन बांटे नहीं जाते। हमारी सहयोगी दिव्या आर्य ने वरिष्ठ पत्रकार हरतोष बल से पूछा कि अखबारों को रोका जाना क्या जायज़ है।
देखिए, प्रेस सेंसरशिप कभी जायज नहीं हो सकती है। अब उस प्रेस से अगर आप इतना डर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलर सेंटिमेंट रैली में इतने बढ़ गए कि आप उसको टैकल करने की बजाय उसकी मैनिफेस्टेशन को टैकल कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो प्रॉब्लम जिस लेवल पे ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको टैकल करने की जगह उसकी रिपोर्टाज को टैकल कर रहे हैं, इससे तो प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, प्रॉब्लम बढ़ती।
पर सरकार का ये कहना है कि वहाँ पर अगर अखबार अभी छापेंगे और अखबार क्योंकि वहाँ पे बायस्ड हैं तो वहाँ पे सेंटिमेंट्स को और भड़काएंगे।
किस तरह के सेंटिमेंट को भड़काएंगे? सेंटिमेंट क्या भड़के नहीं हुए हैं, लोग ऑलरेडी सड़क पे उतर आए हैं, आप उन्हें पॉलिटिकल लेवल पे टैकल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अखबार बायस्ड है, अखबार क्यों बायस्ड है? आपकी 30 साल की वहां पे पॉलिसी का अगर ये नतीजा है तो ये इटसेल्फ एक मैनिफेस्टेशन है। इसकी जगह बाजार के रूमर्स घूमेंगे, लोग तरह तरह की बात करेंगे, सोशल मीडिया आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा, या सोशल मीडिया पे भी इतना रोक है तो ये जो बाजारी रूमर्स हैं उसके बेसिस पे लोग वहां पे काम करेंगे, इससे दिक्कतें और बढ़ेंगी, कम नहीं हुई।
जो क्लैंपडाउन प्रेस पर है, एज अ स्ट्रेटजी क्या दिखाता है सरकार के बारे में?
कि मैं सरकार की रणनीति पे कमेंट कर सकता हूँ अगर ये सामने आके दिखे कि सरकार की कोई रणनीति है। सोल्यूशन तो छोड़िए, डे टू डे जो इस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ही नहीं टैकल कर पाएंगे। लोकल लेवल पे जिसने भी ये डिसीजन लिया है बिना सेंटर से कंसल्टेशन के, बिना NSA जो हैंड्स ऑन है हर चीज में दखल अंदाजी करते हैं, उनके बिना ये सब कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस तरह से जाके एकदम 2 बजे रात को क्लैंप डाउन करें, अखबारों के प्लेट्स सीज कर लें, स्टाफ को डिटेन कर लें? पर इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का इनको कोई समझ नहीं है, स्ट्रेटेजी में पूरी फेलियर है। बेसिकली इस इनकाउंटर और इनकाउंटर के आफ्टरमैथ से क्लियर आइडिया मिलता है ना इस सरकार, ना इस सरकार के टॉप नुमाइंदे, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी और अजीत दोवल को, कोई भी अंडरस्टैंडिंग है कि कश्मीर में आगे कैसे बढ़ा।
और कश्मीर में इतना ज्यादा अखबार नहीं छप रहे, 2 दिन हो गए हैं इसको लेके, कश्मीर में ऐसा लगता है जो कुछ थोड़ी सी जानकारी सोशल मीडिया से छन के वहाँ के ट्वीट्स वगैरह से लोगों की तरफ से आ रही है कि लोग नाराज हैं इससे, पर दिल्ली में, दिल्ली के अखबारों में या दिल्ली के राइटअप्स में या एडिटर्स की तरफ से कोई रोष सामने नहीं नजर आ रहा है।
देखिए, ये इमरजेंसी के टाइम में कहा था कि आस्क टू बेंड द इंडियन मीडिया क्रॉल्ड, अब वो मोदी के 2 सालों में तो बेंड करने के लिए बोला भी नहीं गया है और ये रेंग रहे हैं, प्रेस सेंसरशिप की जिक्र नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फेलियर है। एज एन इंस्टीट्यूशन मीडिया अगर अपने सेंसरशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको इंडोर्स कर सकता है, तो अपने अपनी जड़ें काटने वाली बात है। इंडिविजुअल लेवल पे मोस्टली जो लोग एडिटर बन जाते हैं नपुंसक लोग, प्रेस की जो ऑर्गेनाइज बॉडीज की तरफ से थोड़ी बहुत आवाज जरूर होनी चाहिए, पर उससे ज्यादा कहीं जरूरी है कि अखबारों में एडिटोरियल्स हुए, रिपोर्टाज हुए, अगर वही बंद हो जाता है तो मीडिया बॉडीज जितना मर्जी शोर उठाएं उसका कोई फायदा नहीं।
वरिष्ठ पत्रकार हरतोष बल से बात कर रही थी दिव्या आर्य।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
ये BBC रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता नवजोत सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और उसे मंजूर भी कर लिया गया। सिद्धू पिछले साल ही राज्यसभा में बीजेपी के कोटे से सांसद बने। इससे पहले वो इस साल ही राज्यसभा में बीजेपी के कोटे से सांसद बने। इससे पहले वो 2004 से 2014 तक लोकसभा के सांसद थे। सिद्धू के इस्तीफे को पंजाब में आगामी चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है और अंदरखाने ऐसी चर्चा हो रही है कि वो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि ये सब चर्चाएं हैं, अभी सिद्धू ने सामने आकर कुछ कहा नहीं है सिवाय इस्तीफे की चिट्ठी के। सलमान रवि से सुनिए पूरा हाल।
नवजोत सिंह सिद्धू ने आज राज्यसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को। सोमवार की सुबह वो संसद पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यसभा के उपसभापति को सौंप दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। उधर पंजाब सरकार में संसदीय सचिव के तौर पर कार्यरत उनकी पत्नी नवजोत कौर ने भी अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। सिद्धू की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि वो पंजाब के कल्याण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर राज्यसभा की सदस्यता के लिए तैयार हुए थे। उनका ये भी कहना था कि वो सही और गलत के बीच तटस्थ नहीं रह सकते थे और उन्हें सही और गलत के बीच चुनना था। इस्तीफे के फौरन बाद सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। हालांकि उनकी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, मगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने उनके इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा,
नवजोत सिंह सिद्धू जी और उनकी पत्नी अकाली दल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ, किसानों की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बेहतर पंजाब बनाने के लिए, एक खुशहाल पंजाब बनाने के लिए, देश का नंबर एक का पंजाब बनाने के लिए आज अच्छी शक्तियां एकजुट हो रही हैं और ये पंजाब की राजनीति के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
वहीं कांग्रेस ने सिद्धू के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि सिद्धू की इच्छा के खिलाफ उनका राज्यसभा में मनोनयन किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शुक्ला कहते हैं,
नहीं समझ में आया कि लोग बिना बात किए लोगों को बिना सहमति के नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, समझ में नहीं आता। पहले वो गायत्री पीठ वाले, उनको नॉमिनेट किया था, वो रिजाइन कर गए, अब सिद्धू रिजाइन कर गए, बड़ा एम्बैरेसिंग है राष्ट्रपति के लिए भी।
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि बहुत जल्द ही इस बात की घोषणा हो जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या नहीं।
सही समय पर इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी, लेकिन आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध में नवजोत सिंह सिद्धू साथ आएंगे।
नवजोत सिंह सिद्धू की ये गुगली भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे समय में आई है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछले लंबे अरसे से सिद्धू के रिश्ते पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से अच्छे नहीं चल रहे थे और उन्होंने पंजाब में किसी भी तरह के सरकारी आयोजन से खुद को दूर रखा था। राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि अगले एक दो दिनों के अंदर ही ये तय हो जाएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के साथ अपनी नई पारी शुरू करेंगे या नहीं। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
भारत की राजनीति और नेहरू गांधी परिवार के बीच चोली दामन का साथ रहा है। मौजूदा समय में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और उनके बेटे राहुल गांधी की ताजपोशी भी जल्द हो सकती है, लेकिन परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका गांधी पर भी सबकी उतनी ही दिलचस्पी रही है। प्रियंका पर्दे के पीछे रहना पसंद करती हैं और उनके बारे में बहुत कम मालूमात है। बीबीसी हिंदी पर प्रियंका गांधी विशेष का पहला भाग नितिन श्रीवास्तव से सुनिए।
मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ।
आई डिड आइडलाइज माई ग्रैंड मदर। आई ग्रू अप इन अ हाउसहोल्ड वेयर शी वाज द हेड एंड शी वाज एक्सट्रीमली पावरफुल वुमन।
बुलंद आवाज, तेज चाल और हाजिर जवाब, कुछ ऐसी बताई जाती है प्रियंका गांधी की शख्सियत। बहरहाल सुबह 6 बजे उठने के बाद ट्रेडमिल पर मशक्कत और उसके बाद योग क्रिया। जब भी रायबरेली में होती हैं तो शहर से चंद किलोमीटर दूर भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रियंका का दिन कुछ इस तरह शुरू होता है। पोहे, ब्रेड या कॉर्नफ्लेक्स के नाश्ते के बाद भैया जी यानी प्रियंका लोगों से मिलना शुरू करती हैं और अपने भाई राहुल गांधी के विपरीत उनके लंच का समय बिल्कुल तय नहीं रहता। रोटी या पराठे के साथ सब्जी और दाल, लेकिन साथ में आम या नींबू का अचार उनकी पसंद है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्रों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और यहाँ किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता के मुंह से प्रियंका को देखते ही भैया जी निकल पड़ता है। अमेठी में तिलोई के रहने वाली विजया जायसवाल को प्रियंका के बचपन की भी यादें हैं।
बचपन में आई थी यहाँ, पूछा कि अंकल ये क्या, यहाँ क्या है, यहाँ भीड़ क्यों है, तो कहा यहाँ मजार का मेला लगा हुआ है, तो कुछ बच्चे छोटे छोटे चूड़ी पहन रहे थे, तो कहा अंकल हम भी चूड़ी पहनेंगे, तो उन्होंने जा करके उस दुकान पे चूड़ी भी पहनी।
1999 के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी माँ सोनिया के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। इसी बीच उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी भी की। करीब दशक भर बाद वे तिलोई पहुंची तो सभी से मुलाकात हुई, जिसमें विजया जायसवाल दोबारा मिली।
तो हम लोगों ने उन्हें चांदी रुपए गिफ्ट किए, तो कहा ये क्या है, तो हमने कहा जब बेटी शादी के बाद पहली बार आती है तो हम लोगों के यहाँ बिना गिफ्ट दिए वापस नहीं किया जाता है, तो कहें थैंक यू और ले लिया उन्होंने।
वर्ष 2004 में रायबरेली चुनाव प्रचार प्रियंका की निगरानी में जारी था। परिवार के एक पुराने करीबी जो अमेठी में थे उनसे फोन पर कुछ फरमाइशें हुई, जिनमें गलावटी कबाब, बिरयानी और कोरमा शामिल था। चंद घंटों बाद खाना पैक होकर गेस्ट हाउस पहुंचा। प्रियंका रॉबर्ट ने खाने के मजे लिए और अपनी शाम की दिल्ली की फ्लाइट के लिए बचा हुआ पैक भी करा लिया। वैसे मलाई चाप और सफेद रसगुल्लों का भी शौक रखने वाली प्रियंका रात को सोने से पहले भुएमऊ या मुंशीगंज गेस्ट हाउस के कई चक्कर लगाना नहीं भूलती। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने अपने परिवार को मीडिया की नजर से काफी हद तक बचा कर रखा है, पर बच्चों के साथ फिल्में या प्ले देखना उन्हें पसंद है। भाई राहुल गांधी पर किताब लिख चुके पत्रकार जतिन गांधी बताते हैं,
उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत गार्डेड होती हैं। एक तो अपने बच्चों से वो बहुत जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए खाना पकाना, फिर उन जब वो हॉस्टल गए तो पता लगा कि वो ओवरनाइट ट्रेन लेकर के तकरीबन हर वीकेंड जो है अपने बेटे से मिलने, रेयान से मिलने वहाँ चली जाती थी, वो हॉस्टल चले जाती थी उनके। खुद बच्चों के लिए खुद शॉपिंग करना, खाने के लिए खुद कपकेक्स वगैरह बनाना, काफ़ी पर्सनली उन्होंने, उनका रुझान बुद्धिज़्म की तरफ काफ़ी गया। उन्होंने पीएचडी भी, जो उनका सब्जेक्ट जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है।
2004 के चुनाव के दौरान रायबरेली के रमेश बहादुर सिंह के घर में रह रही प्रियंका ने उनसे रिक्शे मंगवाए। रमेश उस दिन को आज भी याद करते हैं।
हम तो सोचते हैं यहीं पे लेकर के घर के अंदर ही कंपाउंड के अंदर ही घुमाएंगे, इत्तेफाक से उनका अच्छा रिक्शा बुलाइए, तो दो रिक्शे बुलाइए, जैसे आए तो ऐसे एक रिक्शे पे अपना बैठ गई, बच्चे बैठा लिया, लड़की को अपनी गोद बैठा लिया और चल दी, लौट करके उतरी, अंदर जाने लगी और अंदर जाते जाते फिर लौट के आई रिक्शा वाले बाबू पैसा कितना, तो उन्होंने खुद अपने उससे 50-50 रुपया निकाल करके दोनों रिक्शा वालों को।
जाहिर है उनके शुभ चिंतक उनकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन उनके आलोचक उनके इस सहज अंदाज को बनावटी भी बताते हैं। एक जमाने में प्रियंका के साथ इन क्षेत्रों में काम कर चुके कुछ व्यक्ति तो ये मानते हैं कि प्रियंका की शख्सियत बहुत सुलझी हुई है, लेकिन उनके मन में इसकी गंभीरता को लेकर संदेह भी है। रायबरेली में कांग्रेस के लिए 5 दशक तक काम कर चुके राम सेवक चौधरी को सुनिए।
प्रियंका के साथ तो वो एक राजीव गांधी की बेटी है और उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, तेवर दिखता है, लेकिन वो भी उसका उपयोग नहीं कर पाई। जिस प्रतिभा की वो धनी है उसका भी उपयोग उन्होंने नहीं किया। चुनाव के मौके पर वो आ जाती है, फिर 5 साल खामोश हो जाती, पता ही नहीं चलता कहाँ है, जो कह जाती है वो भी पूरा नहीं करती।
लेकिन इसके विपरीत अमेठी में कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता मंसूर अहमद खान जैसे लोग बताते हैं कि प्रियंका उनके लिए भगवान से कम नहीं है, और उन्होंने इनकी बीमारी में बिना किसी को बताए इनका दिल्ली के महंगे बत्रा अस्पताल तक में इलाज भी करवाया।
इत्तेफाक था कि मेरा टाका कटना था, उस टाइम हुआ डॉक्टर ने बुलाया था, मैं वहाँ गया तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब जो है बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मैं नहीं कर सकता इतना इतना पैसा, तो डॉक्टर मेरे पास बिगड़ गए, पहले तुमको गरीबी आ रही है, पता है तुम्हारे ऊपर कितना पैसा लग चुका है, 11 लाख रुपए अब तक यहाँ लग चुका है, ये गई भी थी मुझे पता भी नहीं था, इन्होंने अस्पताल जाके सब पूरा वो किया था।
स्थानीय लोग इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रियंका की याददाश्त बहुत अच्छी है और वे सभी को नाम से बुलाती हैं। अमेठी के पूर्व राजा और अब कांग्रेस के सांसद संजय सिंह भी इस बात का लोहा मानते हैं।
मुझे लगता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी ये दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक पॉलिटिकल आदमी के लिए, सो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें उनमें है।
ऐसे ही नजदीकी रहे एक मुस्लिम परिवार की रसोई से प्रियंका के लिए कभी कभार मुगलई खाना जाता था, लेकिन जब इन शख्स ने प्रियंका से अपने इलाके में एक ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर फरियाद लगाई तो प्रियंका के इर्द गिर्द रहने वालों को थोड़ा बुरा लगा, जिसके चलते प्रियंका से इनकी बात 3 साल तक नहीं हो सकी। बातचीत तो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन इन शख्स को इस बात का मलाल है कि प्रियंका ने उनसे 3 साल बाद मिलने पर ये नहीं पूछा कि आप 3 साल कहाँ रहे। अब आप तय कीजिए कि प्रियंका की शख्सियत में क्या चीजें बेहतर हैं और क्या नहीं। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
प्रियंका गांधी पर अगली रिपोर्ट सुनिएगा कल, और अब सुन लेते हैं आपकी चिट्ठियां राजेश जोशी और वंदना से।
आपकी राय।
नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ वंदना।
वंदना के पास बहुत सारी ईमेल्स हैं और चिट्ठियां भी हैं। वंदना कहाँ से शुरुआत करना चाहती
हैं? जी सबसे पहले पोस्ट कार्ड अशोक कुमार ठाकुर ग्राम माली टोल पोस्ट अदलपुर जिला दरभंगा बिहार से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि डॉक्टरों से संबंधित जो कार्यक्रम है वो इन्हें काफ़ी पसंद आया, खासकर जब पिछले दिनों से डॉक्टरों पर कई तरह के कथित तौर पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं और इस कार्यक्रम को जो श्रृंखला है उसको लेके और भी बहुत सारे ईमेल और चिट्ठियां आई हैं। गणेश प्रसाद हुजदार उन्होंने भी कुछ ऐसा ईमेल लिखा है।
ये विनोद खरे जो इन दिनों मेडिकल नेग्लिजेंस या अस्पतालों की जो भूल चूक है या लापरवाही है उस पर जो रिपोर्टों की श्रृंखला सुना रहे हैं उस पर ये चिट्ठियां आई हैं। चिट्ठियां इसके अलावा भी और हैं लेकिन हम सब चिट्ठियों को शामिल नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इंडिया बोल इस बार हम करना चाहते थे इस मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह से टर्की में फौजी बगावत हुई हमको वो प्रोग्राम रोकना पड़ा या उसको टालना पड़ा, लेकिन भविष्य में अगर कभी ज़रूरी हुआ तो उस विषय पर हम बातचीत ज़रूर करेंगे।
जी बिल्कुल। और अगली चिट्ठी है देवेंद्र सिंह बर्याह की पवनीपुर बीकानेर राजस्थान से।
बर्याह साहब क्या लिखते हैं?
ये लिखते हैं कि बहुत सारे जो श्रोता हैं वो आरोप लगा रहे थे पिछले दिनों बीबीसी पर पक्षपात का, पर इन्होंने कहा है कि बीबीसी हिंदी ने खुद को उस सास की तरह निरपेक्ष रखा है जिसकी बहुत से बहुएं हों। बहुत ही इन्होंने तुलना बहुत वो की है।
अरे साहब, सास पर तो बड़े इल्जाम लगते हैं कि वो निरपेक्ष कभी रहती नहीं है।
नहीं,
तो ऐसे ही बहुओं पर भी इल्जाम लगते हैं। अभी ये पता नहीं क्या है इसका सच।
इन्होंने लिखा है कि बीबीसी ऐसी सास की तरह है जो ध्यान रखती है कि कोई बहू ये ना कह पाए कि किसी दूसरे का पक्ष ज्यादा ले लिया।
हाँ, ये बात तो सही है। मतलब हमारी जिम्मेदारी है ये, हम निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करें और वही हमारी कोशिश भी रहती है।
एक ईमेल है डॉक्टर हेमंत कुमार का और ये अध्यक्ष हैं प्रिय दर्शनी रेडियो लिसनर्स क्लब के। ऐसे बहुत से लिसनर क्लब्स हैं जो कि बीबीसी सुनते हैं।
जी हाँ।
और ये जिला भागलपुर बिहार से लिखते हैं और इन्होंने कहा है कि इन्हें शॉर्टवेव के सारे प्रसारणों की गुणवत्ता बहुत पसंद है और साथ ही जो वेबसाइट ट्विटर यूट्यूब बीबीसी हिंदी का फेसबुक पेज है वो तमाम जो माध्यम है हमारे वो इनको काफ़ी ज़्यादा सूचनाप्रद लगते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम सुनते ही नहीं हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसको भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
राजेश जी एक और ईमेल आया है हमारे पास जैलेंद्र कुमार यादव साहब का। ये सिसवा बाबू ग्राम से पोस्ट सवरेजी डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से है।
महाराजगंज बिहार से
इन्होंने कश्मीर पे लिखा जो अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इनका कहना है कि जो सुरक्षा बल तैनात रहते हैं कश्मीर में उनकी जिंदगी तो कश्मीरी प्रदर्शनकारियों से भी गई गुजरी है क्योंकि माँ बाप इकलौते बच्चों को वहाँ भर्ती होने भेज देते हैं और कहते हैं कि बेटा फौज में है, बहुत शान से कहते हैं, लेकिन बाद में जब जवान शहीद हो जाता है तो कई बार छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं रहते। तो इस विषय पर
सुरक्षा बलों में जो काम कर रहे हैं लोग उनकी समस्याओं के लिए उनकी परेशानियों और कठिनाइयों पर इनका ध्यान गया है और हमारा ध्यान भी इन्होंने आकर्षित करने की कोशिश की है। लेकिन जैलेंद्र कुमार यादव जी आपने सुरक्षा बलों में तैनात लोगों की जिंदगी के बारे में चिट्ठी लिखी है, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि कितनी मुश्किलों में कितनी कठिनाइयों में सुरक्षा बल में तैनात लोग काम करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के राज्य हों या मध्य भारत के राज्य हों, उनकी कठिनाइयों या उनकी परेशानियों से हम ऐसा नहीं है कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है और हम गाहे बगाहे जब भी ज़रूरत होती है तो उनका पक्ष भी हम रखते ही हैं। आपने चिट्ठी लिखी है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ये चिट्ठी लिखना जारी रखेंगे और आगे भी आपके ईमेल आपकी राय हम तक पहुंचेंगी। फिलहाल मैं अपने तमाम श्रोताओं से इजाज़त चाहता हूं क्योंकि वंदना घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
ये थी आपकी चिट्ठियां। समय हमारे पास भी कम है, जल्दी से सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। आज राज्यसभा में कश्मीर की हिंसा को लेकर बहस हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इस हिंसक वारदातों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। गुरुवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद फ्रांस ने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की घोषणा की है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों ने बताया कि सुरक्षा सेना भारी भीड़ वाली जगहों और सरहदों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी और इन जगहों की सुरक्षा सेना करेगी। तुर्की के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक करीब 8,000 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनसे हथियार भी ले लिए गए हैं। इन पुलिस कर्मियों पर पिछले हफ्ते सेना की टुकड़ी के तख्ता पलट की नाकाम कोशिश में शामिल होने का शक है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया तृप्ति श्रीवास्तव ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं अजीत सारथी। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।